जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है।
ओम शांति। ज्ञान के चंदन से ब्राह्मण जीवन की फुलवाड़ी, बाबा कैसे सींच रहे हैं एक एक बच्चे के ब्राह्मण जीवन के, ब्राह्मण बच्चे के जीवन में पावनता की खुशबू, शीतल नयन, मन पुलकित, जैसे सारी जीवन की परिभाषा ही बदल गई। ये केवल छोटा सा संगम युग है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, ना केवल एक जन्म के लिए बल्कि पूरे कल्प की आधारशिला भी रखी जाती है, ना केवल 21 जन्मों के लिए बल्कि पूरे 84 जन्मों के लिए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के जो प्रारब्ध जमा करते हैं वो अभी ही करते हैं। हर ब्राह्मण बच्चे के जीवन में बाबा की शिक्षाएं इतनी ऊंची पढ़ाई स्पष्ट रूप से झलकती हैं कि किस अनुपात में हम बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अर्जित कर रहे हैं। जो जितना अर्जित करता है वो उतना जीवन में खुश रहता है, उतना जीवन में वो निर्विघ्न रहता है। अगर विघ्न आते भी हैं तो विघ्न जैसे खेल की तरह प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। तो हमें अपने जीवन को ज्ञान के चंदन की खुशबू से इतना खुशबूदार बनाने का पुरुषार्थ अभी करना है, और वो पुरुषार्थ नेचुरल और नेचर हो जाए। जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा था, अटेंशन का भी टेंशन ना हो। अटेंशन तो रखना पड़ता है लेकिन उसका भी टेंशन ना हो जाए, स्वाभाविक रूप से स्वतः वो पुरुषार्थ होता रहे। तो कदम कदम पर बाबा हमको अनेक प्रकार की सावधानियां देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं। अगर हम पर्सनली तौर पर मुरली का अध्ययन करते हैं तो जैसे वो दिल से लगता है, अगर उसी मुरली को बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तो महसूस होता है जैसे बाबा हमारे लिए कह रहा है कुछ, जैसे वो शिक्षा दिल से लगती है। अदरवाइज एक बार ही सुनते हैं तो उतना बदलाव नहीं होता है, क्योंकि मन टुकड़ों टुकड़े में बटा रहता है और उसको एकत्रित करना, पूरा एकाग्र करना, उसके लिए बहुत महीन पुरुषार्थ चाहिए, बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए, कदम कदम पर अटेंशन चाहिए। तो हम बाबा के कितने लक्की बच्चे हैं, सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो भगवान से हम पढ़ते हैं। आज थाना गॉड फादर यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा खुशी में रहने वाले, सदा सीखने की ललक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बदलाव बिना पढ़ाई के नहीं होगा। हम जिंदगी में जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, सेवाओं में भी खूब भाग दौड़ करें, दुआएं मिलेंगी उससे, खाता जमा का बढ़ेगा, लेकिन जो एक मानसिक अवस्था ऊंचाई पर जानी चाहिए, शिखर पर पहुंचनी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई अति आवश्यक है, लाजमी है, जरूरी है। इसलिए यज्ञ का पहला नियम है रोज मुरली पढ़ने का, सुनने का। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना, क्योंकि मुरली सर्व समस्याओं का समाधान है। जो पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ को आगे बढ़ने के लिए पंख देती है। तो आज हम जो संडे वाली मुरली है उस पर चर्चा करेंगे, सभी उसमें हिस्सा लेंगे। 91 की मुरली, आज से 31 साल पहले। आप उस कालखंड में चले जाइए 31 साल पहले, सोचिए यहाँ उस समय का कैसा नक्शा होगा मधुबन का। जो मुरली के अनुसार देखें कि ओम शांति भवन भी भरा हुआ है, मेडिटेशन हॉल भरा हुआ है, यहाँ हिस्ट्री हॉल भरा हुआ है, आवास निवास की उतनी व्यवस्था नहीं थी उस समय, और अपने भाई बहने धर्मशाला में ठहरे थे, होटलों में ठहरे थे, और उस समय की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जितने भी मधुबा निवासी हैं धर्मशालाओं में जाकर, सवेरे सवेरे जाकर जो भाई बहने बाहर से आते थे उनके लिए पानी गर्म करते थे, उनके लिए चाय लेकर जाते थे। तो उन मधुबा निवासियों का कितना बड़ा आभार, कितना बड़ा धन्यवाद, कितना बड़ा शुक्रिया होना चाहिए कि सवेरे सवेरे जाकर उनको गर्म पानी देना, उनका चाय पानी उनको पूछना, व्यवस्था को देखना। तो उस समय जो सेवाएं की हुई हैं उन सेवाओं को बहुत बड़ा पुण्य है। वो तपस्या थी एक, उस तपस्या की बदौलत ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय समय का महत्व होता है, तो वो तपस्या वर्ष है, और उस तपस्या वर्ष में बाबा ने नयों के लिए भी कुछ कहा कि कैसे तपस्या भी एक वरदान की तरह है, गोल्डन चांस है। तो हमें इस हर ब्राह्मण जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में बाबा के महावाक्यों का कितना प्रवेश हो रहा है, कितना हम उसको स्थान दे रहे हैं। वो महावाक्य हमारे संस्कार बन रहे हैं, वो महावाक्य हमारे आचरण में आ रहे हैं। अगर उनसे दूरी है तो हमको उनकी जांच करनी है कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं कि अभी तक भी हमारी बुद्धि में वो महावाक्य जिस तरीके से बैठने चाहिए नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि समय तो पंख, समय को पंख लगे वो तो उड़ता जा रहा है, और समय कोई वरदान है, लेकिन उस वरदान का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जो ईश्वरीय कायदे हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, चलाएंगे, और बिना ईश्वरीय ज्ञान के हमारी प्रगति नहीं होगी। तो उस मुरली में बाबा ने मधुबन की महिमा की है, कौन किसको और कहां पर मिल रहा है। मुरली का टाइटल क्या था, सर्व हदों को छोड़ बेहद के वैरागी बनो, लेकिन ये मुरली में पॉइंट नहीं है, ये केवल याद प्यार नमस्ते में ही है। तो कौन कौन से ऐसे हमारे हद के किनारे हैं जहां हमने अपने मन को बांध कर रखा हुआ है, या ना चाहते भी मन वहां चला जाता है, और वैराग्य वासे हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे वैराग्य स्वतः आएगा, वैराग्य लाने की चीज नहीं है, क्योंकि संसार में सबको रहना ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किनारा कर दें, परिवार में रहेंगे, समाज में जाएंगे, अपने बिजनेस में जाएंगे, समान संपर्क में आएंगे, लेकिन उन सबके साथ रहते हुए हमारा मन उपराम रहे। मुरली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन के धरनी पर वैराग्य के बीज बोती है। जितना जितना महावाक्य हमारी बुद्धि में संचित होते जाएंगे, संग्रहित होते जाएंगे, वैराग्य स्वतः शक्तिशाली होता जाएगा। वैराग्य के बीज अपने आप फलीभूत होंगे। तो इस मधुवन धरनी को ये वरदान है। कौन सा वरदान है ये मधुवन? क्या है? साकार मनुष्य लोक का स्वीट होम है ये। जिस स्वीट होम में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, रूहानी मेला होता है। बाबा कहते हैं केवल एक ही स्थान है ये इस पूरे संसार में, एक ही स्थान है जहां नदियों और सागर का मिलन होता है। ऐसी धरनी परम आत्माएं निवास कर रही हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर हमको ये भी स्मृति रहे सारा दिन कि हम भगवान की गोद में बैठकर सेवा कर रहे हैं, उसकी नज़रों के सामने हैं, उसकी छत्रछाया में चल रहे हैं, उसने हमको सेवाओं का मौका दिया है, गोल्डन चांस दिया है, तो भी हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो अभी हम संसार के प्रपंच से, संसार की बातों से, व्यर्थ से मुक्त स्वतः होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अविनाशी नशा रखो, अपने भाग्य का अविनाशी नशा। तो इस मधुवन की धरनी के महत्व को समझना है। इस मधुवन की धरनी के कण कण में परमात्म शक्तियां समाई हुई हैं, परमात्म स्नेह समाया हुआ है, परमात्म ऊर्जा समाई हुई है, लेकिन उसकी महसूसता के लिए, उसकी फीलिंग के लिए हमें उतना अपने मन बुद्धि को भी महीन बनाना होगा, उतना गहराई से मनन चिंतन करना पड़ेगा। उस कालखंड में जाने के लिए अपने सामने वो चित्र लाने पड़ेंगे। जैसे हम यज्ञ के हिस्ट्री के चित्र देखते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? उस कालखंड में चली जाती है। वो चित्र देखने से वैसे वाइब्रेशन स्वतः आने लगते हैं, वो शक्ति स्वतः आने लगती है। जिनके चित्र देखते हैं वो संस्कार स्वतः ही मन में इमर्ज होने लगते हैं कि कैसे वो त्याग तपस्या वाले संस्कार थे, कैसे वो एकजुट होकर रहने वाले संस्कार थे, विघ्नों का सामना करने वाले संस्कार थे, कुछ सीखने वाले संस्कार थे, अनुशासन में रहने वाले संस्कार थे। ये चित्रों को देखकर केवल चित्र नहीं देखने हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ वाइब्रेशन है, बहुत शक्तिशाली त्याग तपस्या की वो प्योरिटी के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। इसलिए चित्रों का जीवन में बहुत महत्व है। तो इस मधुवन में भी जहां रहते हैं, मधुवन का नक्शा हमारी बुद्धि में सदा काल के लिए, हर समय के लिए प्रिंट हो जाना चाहिए। मधुवन केवल भवन को नहीं कहा जाता, मधुवन जो यहाँ की त्याग है, यहाँ की तपस्या के वाइब्रेशन है, यहाँ की प्योरिटी के वाइब्रेशन है, यहाँ जो दादियों ने साधना की हुई है, यहाँ जो लंबे समय तक इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ है, पूरे विश्व में फैली है, वो सारे वाइब्रेशन इधर हैं, वो अपनेपन का वाइब्रेशन, वो सब यहाँ समाये हुए हैं। तो वो हमको महसूस करना, फीलिंग करना है। तो ये मधुवन की धरनी की विशेषताएं हैं। इस धरनी को वरदान है, कौन सा? कि स्वतः योग लगता है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अव्यक्त स्थिति भी स्वतः अपने आप बनती है, खिंचावट होती है, एक आकर्षण होता है इधर मधुवन के प्रति। तो हमको मधुवन का महत्व समझते हुए उतना उसका फायदा उठाना है। केवल बुद्धि तक नहीं हमको रखना है कि हमको हाँ इतने मधुवन के इतने फायदे हैं, लेकिन उसका फायदा उठाना पूरा। तो इस बेहद के मधुवन में हमको भी बेहद मधुर मधुर बनना है। जैसे बाबा कितना मीठा है, आज की मुरली में है, बाबा क्या है, कितना मीठा है, सहकरीन जैसा है। तो क्या हमारी मिठास में भी दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है मिठास? हमारी वाणी में मिठास बन रही है, या कहीं ना कहीं वो कर्कश आवाज़, किसी को टोंट वाली आवाज़, या अपने प्रति गिल्ट कॉन्शियस? तो वो देखना है कि मधुवन मेरे अंदर समाता जा रहा है। स्वयं को समझना कि मैं चलता फिरता मधुवन हूँ। जहाँ भी हम रहते हैं, मैं मधुवन अर्थात जो निरंतर बाबा की याद में रहते हैं वो जैसे उनकी बुद्धि में मधुवन बसा हुआ है, जो निरंतर तपस्या में रहते हैं जैसे उनकी बुद्धि में मधुवन बसा हुआ है, जिनकी रग रग में त्याग समाया हुआ है जैसे वो मधुवनवासी हैं, जिनकी जिनकी मानसिकता में सबको सुख देने की भावना है, जिसका मन शुभ भावनाओं से शुभ कामनाओं से भरा हुआ है जैसे वो मधुवनवासी है, जो सबके प्रति रहम दिल है जैसे वो मधुवनवासी है। तो हमको चलते फिरते जांच करनी है कि सारे मधुवन के गुण हमारे अंदर हैं, जितने भी यहाँ स्लोगन लगे हुए हैं, जितनी भी शिक्षाएं या दीवारों पर अंकित हैं, शांति स्तंभ पर अंकित हैं, या जहां भी हम देखते हैं, वो सारी जैसे हमारे अंदर छप जानी चाहिए। वो केवल दीवारों तक नहीं है, अपने मन की दीवार के ऊपर वो सारी शिक्षाओं के स्लोगन लटके रहने चाहिए। जितने भी मधुवन में स्लोगन लगे हुए हैं, जहां भी हमारी नजर जाती है, ये एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है हमें अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। मन की एकाग्रता को अगर बढ़ाना है तो ये होमवर्क करना है कि जितने भी मधुबन में स्लोगन लगे हुए हैं वो सब लिखने और उन सबको याद करना है कि फलानी जगह डाइनिंग हॉल में क्या लिखा है, वहाँ जहाँ पानी पीते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है, शांति स्तंभ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ले जाओ अपने मन को वहाँ, क्या लिखा है, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये मन को एकाग्र करने का तरीका है, कहाँ लिखा हुआ है, डाइनिंग हॉल में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, सुख देना है सुख लेना है। तो हम सोच रहे थे कि बहुत सहज पुरुषार्थ है अगर हम बैठे बैठे ये भी सोचे कि सारे मधुबन में कौन कौन से स्लोगन लगे हुए हैं, अगर वो भी हम पुरुषार्थ करें, मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएगा, उसमें शक्ति आएगी, वो सारे मधुबन के वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाएंगे। घरों में भी क्या होता है, हम अच्छे अच्छे बाबा के चित्र यहाँ से लेकर जाते हैं, घर में दीवारों पर टांग देते हैं, लेकिन वो मन में नहीं रहते हैं स्लोगन। बाबा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, कहीं वो दीवार तक कितने रह जाता है, अंदर में लगा होना चाहिए, अंदर में वो चित्र घूमता रहना चाहिए बात। तो ये मन को एकाग्र करने का बहुत सरल तरीका है। तो बाबा ने तपस्या वर्ष में क्या कहा बच्चों को, एक्स्ट्रा बल दिया है, तपस्या वर्ष के तीन वरदान दिए, कौन कौन से, कौन कौन से वरदान थे मुरली में, तीन वरदान, एक तो तपस्या करने का वरदान, दूसरा पुरुषार्थ को बढ़ाने का वरदान, और तीसरा मधुबन में आने का वरदान। तो जो बच्चे वरदानों से पल रहे हो उनके जीवन में मुश्किल हो सकती है, विघ्न आ सकते हैं, विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न खेल की तरह लगेंगे। वैसे भी सभी आप देखेंगे इस ब्राह्मण जीवन में जितने भी विघ्न आए हैं, अगर उन विघ्नों की तरफ नजर दौड़ाओ तो अभी वो विघ्न क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं थे वो, तो जैसे ऐसे हम बिना मतलब के परेशान हो जा रहे थे अगर देखा जाए तो। और आने वाले टाइम में जितने विघ्न आएंगे और उस टाइम में हम जाके देखेंगे तो ये विघ्न भी कुछ नहीं लगेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं, लेकिन हमारी फितरत हमारी आदत क्या हो गई है, चिंता करने की हो गई है। तो चिंता करने के बजाय हमको शुभ चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो चिंता के को पकड़ के बैठते हैं, जो बात किसी ने बोल दी है वो चला गया, बोलने वाला भी चला गया, समय भी बीत गया, परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, और हो सकता जिसने बोला होगा उसने भी वो भी भूल गया होगा, लेकिन हम उस बात को पकड़ कर बैठते हैं, बस पकड़ के बैठे हुए हैं। और अगर बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो बात कुछ भी नहीं थी, वो बिना मतलब के सोचे जा रहे हम सारे दिन में। अगर चेकिंग करें अपने संकल्पों के अपने विचारों के, तो जांच में हम देखेंगे कि अधिकतर हमारे संकल्प ऐसे होते हैं जिन संकल्पों को करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनका, किसी को देखा किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो उसने ऐसे कैसे बोला उसके बारे, उन बातों में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जैसे हमारी एनर्जी चली जा रही सारे खजाने वेस्ट चले जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हें अविनाशी भाग्य मिला है, अविनाशी बाप मिला है, और अविनाशी तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो तुम्हें अविनाशी नशा भाग्य का नशा अविनाशी होना चाहिए, लेकिन हम विनाशी वस्तुओं के पीछे, विनाशी विचारों के पीछे, विनाशी संबंधों के पीछे, वो हमारे लंबे समय की आदत पड़ी है, इसलिए उसके वश हो जाते हैं हम, इसलिए अविनाशी बाप अविनाशी भाग्य और अविनाशी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसका हमको नशा भी अविनाशी रहना चाहिए। लेकिन वो विनाशी नशा हावी हो जाता है अविनाशी के आगे, बताइए। अविनाशी हमारा सदा काल का है और विनाशी थोड़े समय का है, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अविनाशी बाप की छत्रछाया में रहना है, देखना है मुझे कौन कौन सा अविनाशी भाग्य मिला है। सबसे बड़ा भाग्य तो कौन सा मिला है कि स्वयं भाग्य विधाता ही हमारे पर फिदा हो गया है। वो हमारा बना नहीं है, वो हमारा अपना बन गया है। जैसे तुम बच्चे ईश्वर की गोद में बैठे हो, एडॉप्शन हो उसकी, उसकी नजरों में बसे हुए हो, लेकिन हम अपनी नजरों में कोई दूसरी दूसरी बातें बसा के रखते हैं, किसी और कोई बसा के रखते हैं, उसको निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं फिर बसा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं फिर बसा रहे हैं, उसी में हमारा टाइम जो चल जाता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने नैन, तुम मेरे नैनों के नूर हो। तो जैसे हम भगवान के नैनों के नूर हैं, तो भगवान भी हमारे नैनों का नूर है। उसको अपनी आंखों में बसा के रखना, उसको अपने दिल में, दिल तख्त नशीन। तो कितना बड़ा भाग्य हमारा। तो इस तपस्या वर्ष में, वो 91 तपस्या वर्ष तो है, लेकिन अब भी ये जो तपस्या शुरू हो रही है, क्योंकि संगम युग कहाँ जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, और ये तपस्या का समय चल रहा है। वैसे भी हम देखेंगे तीनों कॉम्प्लेक्स में क्या चल रहा है, साधना ही साधना चल रही है, तपस्या तपस्या चल रही है, बठियां बठियां चल रही हैं। तो वो समय फिर से शुरू हो गया है। तो हमको ये जो गोल्डन चांस मिला है, इस चांस को हमको किसी भी हालत में खोना नहीं है। इस तपस्या वर्ष को वरदान है ये, तो इस वरदान को हमें, इसका हमको पूरा फायदा लेना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सारा ज्ञान एक ही शब्द में है। कौन से शब्द में? मेरा बाबा। ये क्या है? फुल नॉलेज है ये। अब बताओ, एक ही शब्द में मेरा बाबा, फुल नॉलेज, और क्या चाहिए हमको? सारा तो सार उसी में है, विस्तार उसी में, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। विस्तार को याद करना मुश्किल है, लेकिन सार को याद करना मुश्किल नहीं है। तो फिर मुश्किल क्यों बना देते हम? क्योंकि विस्तार के पीछे जाने की आदत पड़ी। बाबा कहते सेकंड में बिंदी लगाओ, बिंदी को आंखों से मालो, लेकिन हमने विस्तार को पकड़ के रखा हुआ है। जितना विस्तार के पीछे हम जाएंगे, उतना हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, हमारे खजाने वेस्ट होंगे, हमारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, समय रूपी खजाना चला जाएगा हाथ से। इसलिए बाबा कहते समय है उड़ने और उड़ाने का समय है, उड़ो और उड़ाओ। और उसकी विधि बताई, कौन सी विधि? वेस्ट को बचाओ, व्यर्थ को बचाओ। कौन कौन से खजाने बताए काल की मुरली में? कितने थे? 6। सबसे पहला कौन सा था? हाँ, लेकिन सबसे पहले था श्वास का खजाना। दूसरा, यह भी मन को एकाग्र करने का तरीका है, क्रमबद्ध याद करना, भले सारी मुरली नहीं, कुछ एक ऐसे शब्द है जैसे मन को उसमें बिठा देना, क्रम वाइज जो चीज जहां रखनी ना, वहां उसकी सुंदरता होती है ना। तो पहला खजाना था श्वास, दूसरा संकल्प, तीसरा समय, चौथा गुणों का खजाना, और पांचवा शक्तियों का, और छठा ज्ञान का खजाना। इसके अलावा और कौन से खजाने हमको मिले हुए जो हम गवाते रहते हैं? वो तो बाबा ने 6 बताए, और 6 खजाने को और बताओ। वैसे तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, खुशी का खजाना, संतुष्टता का खजाना, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, संकल्पों का खजाना, अनुभव का खजाना, और प्यार का खजाना, और तो कितने खजाने हैं। तो हमको ऐसे लिस्ट बनाने दी, अपनी एक अलग से खजानों की लिस्ट, मेरे पास कौन कौन से खजाने हैं उनकी लिस्ट बनाओ, 21 खजाने, 31, 100, ऐसे लिस्ट बनाओ। मन बुद्धि को चलाना है, अगर मन बुद्धि चलेगी नहीं तो पुरानी आदतें हमको बार बार खींचेगी। इसलिए नई आदतों का निर्माण करने का हमको पुरुषार्थ करना है। और नई आदतें कहाँ से मिलेंगी हमको? मुरली का मनन चिंतन करने से। बाबा ने 6 खजाने बताए, अब वो तो एक एग्जाम्पल दिया हमको कि ये खजाने आपने गवाए हैं, अब इनको जमा कर लो, और जमा करने की विधि है व्यर्थ को बचाओ। तो सारे दिन में देखना हमारा समय रूपी खजाना कहाँ कहाँ चला जा रहा है। जैसे जैसे हम इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे नए नए विघ्न भी आते जाएंगे, और उन नए विघ्नों का सामना करने के लिए हमें अपने मन को भी उतना शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो बाबा कितने समय पर डैश खा जाएंगे, क्या धोखा खा जाएंगे। तो पहले से हमको इतना स्तर, कितना जागरूक, इतना सतत पुरुषार्थ करना होगा कि हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं जो समय पर माया अपने आप ही सरेंडर हो जाए। माया को परखने की भी आंख, सूक्ष्म आंख चाहिए, क्योंकि माया भी बड़े नए नए रूप से आएगी। जब हमको लगेगा ये तुम्हारे सहयोगी हैं, ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहां कोई ना कोई सामने वाला का स्वार्थ छिपा होता है, या हमारी सूक्ष्म अटैचमेंट होती है जहां हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो हमको देखना माया से भी पूरी सावधानी चाहिए, क्योंकि नए नए रूप में माया भी हमारे पर आक्रमण करेगी। इतने लंबे समय से दोस्ती की है तो वो शायद थोड़ा छोड़ेगी हमको, तो उसको परखने की आंख भी खुली चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, तुमको क्या मिला है? तीसरा नेत्र मिला है। तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी हो। और एक वो त्रिकालदर्शी के साथ एक और भी शब्द बोला था आज बाबा ने, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकदर्शी था ना, बोले त्रिलोकदर्शी भी बनो। तो हमको ज्ञान का नेत्र हमारा हमेशा खुला रहे। अगर खुला नहीं रहता, अर्थात ज्ञान की स्मृति में नहीं रहते हैं, विस्मृति में हो जाते हैं, तो माया फिर आक्रमण करती है और हमारे जितने भी किए की कमाई है वो सारी चट हो जाती है। फिर बाद में हम कहेंगे खजाने तुम्हारे पास बहुत जमा है, समय पर काम में ला जाएंगे, लेकिन जब समय आएगा तो झोली सारी खाली दिखेगी, फिर पछताएंगे, फिर पता चलेगा बाबा बता रहे, बाबा ने कहा ना कि हाथ उठाओ, आई वेल के लिए कुछ रखा तो नहीं है। फिर बाबा लास्ट में क्या कराएगा? टीवी में दिखाएगा, साक्षात्कार कराएगा। हम कहेंगे बाबा हमने तो बहुत जमा किया है, और फिर बाबा टीवी ऑन कर देगा, उधर से चैनल 1 चालू, फलानी तारीख, फलाना नाम, फोटो भी साथ में आएगी, फिर बाबा बताएगा ये तुम ही है ना, तो फिर उसमें मना कर पाएंगे हम? सोचो सामने टीवी आ जाए, है ना, और बाबा सारे ब्राह्मण परिवार सभा बैठी है, पूरा डायमंड हॉल बैठा हुआ है, और सामने बड़ी स्क्रीन टीवी लगा हुआ है ना, और उस पर बाबा ने स्विच ऑन किया और सामने चल रहा है कि मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं योग के टाइम में, सब दिखेगा उधर, है ना, योग मुरली का टाइम है और हम कभी इधर उधर ही घूम रहे हैं, सेवाओं का टाइम है और हम कभी इधर उधर जा रहे हैं, चिंतन करने का टाइम है, हम ऐसे गप मार रहे हैं। वो सारे चैनल खुलेंगे बाद में, है ना, कि कितने चैनल देखे हुए हैं, जी टीवी, सोनी टीवी, फलाना डिमका, सब दिखेगा उधर। फिर तो हमको देखना है कि हमने अपने जीवन को समय रूपी खजाने को कितना सफल किया, ये खजाना हमारे हाथ से निकलना ना पाए। कितना सुंदर समय चल रहा है कि भगवान के साथ हम बैठकर बातचीत करते हैं, इसलिए जब भी योग में बैठते हैं, जब भी हमको मौका मिलता है, तो ये संकल्प करना कि मैं और मेरा बाबा बैठा हुआ है, मैं और भगवान अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या बातचीत कर रहे हैं? अपने दिल का हाल चाल मैं उसको सुना रहा हूं, जो भी हमारा सारे दिन में हमने कर्म किया, अपनी कमी कमजोरियां भी, जो भी सेवाएं की हैं, सब जैसे उसके साथ शेयर कर रहा हूं, और जैसे बाबा भी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मुझे जैसे ताकतवर बना रहा है, वो शक्तिशाली बना रहा है, जैसे सारी शक्ति वो मुझे बिल कर रहा है, जैसे उसने मेरे हाथ पकड़ लिए एकदम और पूरा फुल करंट आ रहा है, चार्जिंग हो रही है, जैसे उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और सारे ब्रह्मांड की शक्ति, सारे शांति धाम की शक्ति, सारी उसने अपनी सारी शक्तियां मुझ में जैसे भर दी है, एकदम फुल चार्ज कर दिया है। जैसे मोबाइल 100% चार्ज होता है तो कितनी खुशी होती है ना, थोड़ी बहुत थोड़ी तो खुशी होती है, और जब थोड़ा कम हो जाता है 10% और यात्रा लंबी हो तो क्या होता है, कहाँ चार्जिंग का पॉइंट मिले लगाएं। तो ऐसे आत्मा रूपी मोबाइल को भी हमको फुल चार्ज करके रखना है, ताकि समय पर हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ जाए, उससे कनेक्शन हो जाए, उससे हम बातचीत कर सकें। अगर चार्जिंग ही खत्म हो गई तो बात कैसे करेंगे? तो हमको अपने मन बुद्धि को पूरा चार्ज करना है। तो जितने भी हमको खजाने मिले हैं, बाबा कहते उड़ो और उड़ाओ, जो भी खजाने हैं अविनाशी खजाने हैं, इस अविनाशी खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कैसे लगाएंगे? दान करेंगे, बांटेंगे, उसको सहयोग देंगे एक दो को, किसी की समस्या का समाधान करने के लिए, जैसे संडे के मुरली में था ना, 3-4 संडे पहले, तुम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो तो तुम्हारा कर्तव्य है देना। क्या क्या देना? उसमें भी 6 बातें थी, कौन कौन सी? हिम्मत, उमंग, उत्साह, खुशी, प्रेम, शक्ति, शांति, तो 6 ही थी, इसके अलावा और भी हो सकती है। इसलिए बाबा कहते अपनी जेब में क्या रखो? सहयोग के नोट रखो, अर्थात बुद्धि रूपी झोली में ये सब चीजें भरी रहनी चाहिए, ताकि समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। अगर वो चीजें हमारे पास है ही नहीं है तो उपयोग कैसे करेंगे? और ये चीजें हमारे पास आएंगी कहां से? वाणी से आएंगी, मुरली से आएंगी। इसलिए थोड़ा चिंतन करना है, क्योंकि इस समय हमारे आसे निकलता जा रहा है। हमारे में जो सूक्ष्म उदासी क्यों आती है, हम अपनी खुद ही जांच करते हैं, जैसे हम खुद फील करते हैं। अगर थोड़ी सी हमारी खुशी कम होती है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि हमने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया, चाहे वो कहीं भी किया, या किसी के साथ गपशप मारी है, या हाँ हमें हाँ मिलाई है, या ऐसे समाचार देखे जिनकी जरूरत नहीं है, या ऐसी बातों की चर्चा की है जो हमारी शक्तियां खत्म कर देती है। वो हमको सूक्ष्म उदासी में ले जाएगी, गिल्ट कॉन्शियस अंदर में बढ़ जाती है। सभी अपना अपना अनुभव तो करते होंगे, और जिस दिन पूरी हमने अपने ऊपर एक दिन भी अगर हम अपने ऊपर ऐसा अटेंशन दे के अच्छा पुरुषार्थ करें, तो जो शाम को खुशी हमको मिलेगी, अपने आप पता चलेगा कि हमारे जीवन में कहां कहां विसंगतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं हमारे से। तो एक दिन के बट्ठी करके देखनी है, एक दिन की केवल, कि जो पहले हमको देख लेना है पिछले दिन में कि मेरे अंदर में कौन कौन सी ऐसी आदत है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, जो मेरी खुशी को छीन रही है। आज के दिन केवल एक दिन उसी की भट्टी करनी है, उसमें देखना है हमको कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। हमारे संकल्प ऐसे वैसे तो नहीं है क्या, जो हमको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना एकत्रित करना था उसकी बजाय हम इधर उधर के संकल्पों का मटेरियल तो नहीं बुद्धि में डाल रहे हैं। संकल्प जैसे हमारा खजाना है, वो आत्मा का भोजन है, खुराक है वो। अब ऐसी वैसी खुराक डाल दी तो क्या होगा, बीमारी होंगी अंदर में, मक्खी मच्छर पैदा होंगे। तो हमको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना है। तो बाबा कहते उड़ो और बढ़ाओ, उड़ाओ, और स्वप्न में भी गलती नहीं करना। कौन सी स्वप्न में भी गलती नहीं करना, कल संडे की मुरली में था ना, कौन सी गलती नहीं करना। हाँ, ये क्योंकि जो भी हमको मिला है ये प्रभु की देन है, विशेषताएं हैं। स्वप्न में भी गलती नहीं करना कि मेरी विशेषताएं, नहीं तो इस ज्ञान मार्ग में और ये नेचर हो ही जाता है। धीरे धीरे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं तो अहंकार का भी पोषण होता है। धीरे धीरे हमको, जैसे हम बड़े परिवार में जाते हैं तो अगर कोई हम राय देते हैं कहीं, या हमारे से कोई पूछता है और हम राय देते हैं समझ लीजिए और नहीं मानी जाती है, तो सूक्ष्म में भले हाँ हमें हाँ ठीक है जी आप जो कहा ठीक है, लेकिन अंदर से वो रहता है साथ में सूक्ष्म में अहंकार, कि मैं जो कहता हूं, मैं जो सोचता ना वही राइट है। भले सामने सामने हाँ हाँ कहेंगे लेकिन अंदर में वो चीज रहती है। और फिर बाबा क्या कहते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे अगर वो अंदर में चीज बिठा ली तो रियलाइजेशन पावर भी खत्म हो जाती है, महसूस ही नहीं होता फिर कि हम गलतियां कर रहे हैं, कि आगे के नियम मर्यादाओं के विपरीत चल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन धीरे अंदर में सूक्ष्म रूप से तो महसूसता होती है, और उसका परिणाम खुशी गायब, संगठन में रहने में मुश्किल हो जाएगी, विचारों में आपस में आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, उतना मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो सूक्ष्म रूप से जो अहंकार बढ़ता जाता है, देखना है कहां कहां ये जो बाबा की विशेषता है वो प्रभु प्रसाद है, उसको हम अपना तो नहीं मान रहे हैं। वो तो उसकी हमारे ऊपर कृपा है, उसकी अनुकंपा है, उसकी शत्रुता है कि हमारे ऊपर उसने मेहरबानी की है। हमारा है ही क्या है, बाबा ने कहा ना, जहां बाप कहा वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां बाप नहीं है। मेरा कहा तो क्या होगे, मैले होगे। तो कितनी सारी मैल आत्मा के ऊपर चढ़ी है, पुराने संस्कारों की मैल, पुरानी आदतों की मैल। और बाबा ने कहा कौन से संस्कारों को कार्य में लगाओ, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ। तो ईश्वर ने हमको वो अपने सारे संस्कार हमको दे दिए, तभी तो बोला कार्य में लगाओ। अगर में वो हमारे में वो संस्कार होते नहीं तो बाबा क्यों कहते ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाओ। अर्थात ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने सब कुछ हमको दे दिया है, तो कौन कौन से ऐसे ईश्वरीय संस्कार है जो हमको कार्य में लगाने हैं, कौन से ईश्वरीय संस्कार है। मुरली में दादियों के लिए भी कहा वो कि रहम दिल बनकर दादियों ने छुट्टी दी सबको, जो इतने सारी संख्या में अपने भाई बहने आगे, तो जो रहम के संस्कार और सबको देने के संस्कार, सुख देने के संस्कार, शुभ भावना शुभकामना के संस्कार, सबको सहयोग देने के संस्कार, उमंग उत्साह देने के संस्कार, हिम्मत बढ़ाने के संस्कार, किसी की समस्या का समाधान करने के संस्कार, तो ईश्वरीय संस्कारों को हमको कार्य में लगाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर अगर वो कार्य नहीं लगाते तो कहाँ कहीं ना कहीं हमारी उन चीज़ों के प्रति अटैचमेंट हो जाती है। इसलिए फिर बाद में बच्चे क्या कहते हैं, मेरा सेंटर। बाबा कहते हैं मेरा कहाँ से आया। अगर बनाया भी है बच्चों ने तो किसके लिए बनाया, बाबा के लिए, तो किसका सेंटर हो गया। लेकिन हम फिर क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में रहता है, यहाँ हमने ना इतना सहयोग दिया था, और किसी ना किसी तरीके से कहीं किसी मुख से निकल ही जाता है, मन अंदर में रहती नहीं है बात। वो समाने की शक्ति हमने यूज नहीं की। भक्ति में कहते हैं एक हाथ से दिया तो दूसरे को भी पता नहीं चले। ये तुमको ज्ञान मिला है, समझ मिली है कि एक का पद्म गुणा मिलेगा हमको। चलो बाद में वो स्थूल में मिले ना मिले, लेकिन उसकी जो खुशी मिलेगी अभी, उस खुशी का तोड़ तो स्वर्ग की खुशी से आगे कुछ नहीं। स्वर्ग से भी बढ़कर तो अभी की खुशी है, क्योंकि अब हमको कंट्रास्ट है कलयुग का भी और सतयुग का भी। अभी की जो खुशी है उसका, वो बहुत ऊंची खुशी है, वो भगवान के साथ की खुशी है। तो हमको ये देखना है कि जो ईश्वरीय संस्कार है हम उनको कार्य में लगा रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा भक्ति में भी, तुम बच्चों ने कहा क्या कहा, तन मन धन सब तेरा। चार बातें बताई थी, कौन सी चौथी बात कौन सी थी, तन मन धन और चौथी बात कौन सी बताई, कौन सी थी चौथी बात। कुछ शब्द भी अगर हम पकड़ लेंगे ना तो भी मुरली का लिंक बना रहेगा। तो कौन सी चार बातें थी, भक्ति में कहा तन मन धन सब तेरा, और यहां बाबा ने कहा तो और भी ऐड की बुद्धि, बुद्धि की बात कही कि बुद्धि भी किसकी दी हुई है, जन्मते बाबा ने प्रदान क्या दे दिया, दिव्य बुद्धि का प्रदान दिया। तो वो भी हमारी नहीं है कि मेरी बुद्धि इन्वेंशन बहुत अच्छा करती है या मैं बहुत अच्छा सोचता हूं। तो ये तन मन धन सब उसको अर्पित कर दिया, फिर हमारा रहा ही क्या है। और ये सब चीजें प्रैक्टिकल में दादियों के जीवन में दिखाई देती थी। एक है जो हम बड़ों के जीवन में देखते हैं उनका वर्णन करना केवल, लेकिन वर्णन करने के साथ उनको अपने जीवन में आत्मसात करना वो बड़ी बात। नहीं तो कई दफा ये भी देखते हैं कि हम कहते हैं दादी जी ऐसे कहते थी, दीदी जी ऐसे कहते थे, मम्मा ऐसे कहती थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। वो तो हमको सबको पता वो करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। अगर हम वो चीज नहीं करें तो हम जितना मर्जी ढिंडोरा पिटे कोई असर नहीं होगा कहने का उसके ऊपर। इसलिए छोटी छोटी बातें भी अगर जो बड़ों के जीवन में हैं उनको हम थोड़ा सा भी ग्रहण कर लें तो भी हो सौभाग्य। जो दादियों के जीवन में त्याग तपस्या उनका अंश मात्र भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भी जैसे उनकी पालना जैसे सफल हुई, तो वो भी हमको देखना है। नहीं तो केवल बुद्धि तक ही रह जाएंगी सारी बातें। वो अपना सूक्ष्म रूप से अहम अपने आप काम करता रहता है, छोड़ता नहीं हमको वो अहम। इसलिए बाबा कहते तन मन धन भक्ति में तो कहा, अभी प्रैक्टिकल में उसको करके दिखाओ। तो ये विशाल महफिल लगी थी कब, 91 में। तो इस महफिल में क्या देखा फिर बाबा ने कि नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। इसलिए बाबा ने सावधानी दी नए नए बच्चों को, कौन सी, कि जैसे थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो मेरापन आ जाता है। इसलिए नए बच्चों को भी सावधान किया। इसलिए मधुवन में आए हैं तो हमें हर एक की विशेषताएं देखनी है। बाबा ने कहा है तुम हो होली हंस, होली हंस अर्थात सबकी विशेषताओं को देखने वाले, अवगुणों को देखने वाले नहीं। अगर अभी भी हम अवगुण देखते हैं तो जैसे हमारा शूद्र जीव नहीं है। बाहर से ड्रेस हमारी चेंज है लेकिन अंदर से हमारी वृत्ति कैसी है। इसलिए बाबा कहते शक्तिशाली वृत्ति होनी चाहिए, शुद्ध वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र वृत्ति होनी चाहिए, आत्मिक वृत्ति होनी चाहिए। तो हमें वो चीजें देखनी है जो हमारा उत्थान करें, ना केवल हमारा बल्कि हमारे यज्ञ का उत्थान करें, ब्राह्मण परिवार का उत्थान करें, एक दो के प्रति वो शुभ भावना शुभकामना रहे। तो जितने भी हमको समय समय पर इशारे मिलते हैं, बड़ों के इशारे मिलते हैं या बड़ों की शिक्षाएं मिलती हैं, तो उनको हमको अपने जीवन में लाना है। केवल सुनने सुनाने तक सीमित नहीं रखनी, और उनको थोड़ा थोड़ा भले लाओ। पता है इतनी मुरली सुनिए सारी बातें एक जीवन में एक दिन में धारणी होने वाली, अगर उसमें से हम दो बातें भी रख लें जीवन में एक ही दिन में अमल कर लें, एक दिन में एक ही बात अगर अमल कर लें तो 30 दिन में कितनी बातें हो जाएंगी हमारे पास, 30 बातें हो जाएंगी। अच्छा अगर अब अभी हम देखें कि हम कोई इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए इतने साल हो गए, किसी को 20 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, अगर हम अभी सोचें कि मान लीजिए हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं कि हमारे में 20 गुण हैं वो वाले कोई ना कोई, तो क्या रिजल्ट आएगी हमारे सामने। पहले तो गुण याद ही नहीं आएंगे, वो लेकिन होने तो चाहिए ना। अगर एक साल में हमने एक गुण भी धारण कर लिया होता तो कितने गुण हो गए होते आज तक। एक साल में एक भी शक्ति के ऊपर सारा अच्छी तरह चिंतन कर लिया होता तो आज कितनी शक्तियों के मालिक बन जाते हम। एक साल में एक ही कर्मेंद्रिय पर काम कर लिया होता कि एक साल में इन आंखों पर ही सारा काम करना है तो आज हम कितनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते। लेकिन हमारी मानसिकता खंड खंड हुई पड़ी है, हमारे विचार टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, संस्कार अपना ही काम करते जा रहे हैं, जैसे हमको वो आत्मा को जैसे नचा रहे हैं। तो पुरुषार्थ भले, इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे भी पुरुषार्थ करे तो भी बहुत बड़ा जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पूरी पूरी क्या होता है, तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तुमको ये नहीं सोचना कि हमको एक ही दिन में सारा कुछ कर लें, धीरे धीरे भी करो, लेकिन कुछ जमा हमारे हाथ में हो रहा है वो हमको एक महसूसता होना चाहिए, वो एक आत्मिक संतुष्टता, वो एक कॉन्फिडेंस अंदर में बढ़ना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अंदर में। फिर बाबा ने क्या कहा, एक दिन ये आबू सारा आपका हो जाएगा। क्या अर्थ है उसका, क्या अर्थ है उसका, हमने क्या सोचा और बाबा ने किस तरीके से बताया होगा, अर्थात आबू वाले सारे चले जाएंगे इधर से छोड़ के, तो क्या अर्थ है उसका? नहीं, उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ है कि सब मानेंगे अच्छी तरह से, ऐसा थोड़ी नहीं खाली करके चले जाएगा कोई भी, सब आएंगे। जैसे जैसे हम कहीं रहते हैं, अगर चार पांच घर बाबा के बच्चे सब ज्ञान में चलते तो क्या बोलेंगे, ये सारी कॉलोनी हमारी है तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जैसे हमारा एक सूक्ष्म में हक बन जाता है हमारे परिवार का है तो हम वहां बिना बताए भी चले जाते हैं कि हमारा भाई है वो तो अपना, और अपने भाई के घर में को बता के थोड़ा जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन आएगा जो आबू वाले सारे मानेंगे, इस ज्ञान को मानेंगे, बाबा जो बाबा कहते ना हर दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा दिखाई देगा, लहरेगा वो, और वो वास्तव में अब दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो माउंट आबू वाले हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत सारे भाई बहने ऐसे जो बाबा से जुड़े हुए हैं और वो आते हैं अभी धीरे धीरे, बहुत फर्क पड़ गया हुआ है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, हमको वैसा पुरुषार्थ कर लेना है जो हम उनसे ज्यादा पुरुषार्थ कर लें, नहीं तो लंबे समय तक हम यहां रहे और हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया और लास्ट वाले भी आके पूरा फायदा ले जाए तो। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये वरदानी समय है, वरदानी जीवन है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाओ। और स्लोगन कौन सा था कल, डैश डैश में रहो तो डैश खत्म हो जाएगा, उमंग उत्साह में रहो तो डैश खत्म हो जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा। और आज का स्लोगन क्या था, तो ज्ञान रत्न से ना खेलना ऐसे मन बुद्धि, और वरदान था स्लोगन मन से शुरू होता है, ये होता है बुद्धि को चलाना, मन की उलझनों को उसमें उलझे रहो, मन की उलझनों को तो मन की उलझनों से मुक्त बनो, वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ, उज्जवल बनाओ। और वरदान क्या था आज का, क्या था वरदान, सफल तपस्वी सच्चे वैष्णव। हाँ, जैसे ब्राह्मण जीवन में किसी के शरीर को टच करना भी अपवित्रता है, ऐसे ही मन बुद्धि से भी किसी को टच करना भी ये भी अपवित्रता है। तुम बच्चे हो सफल तपस्वी वैष्णवी मूर्त, इसलिए तुमको अपने मन बुद्धि से भी किसी को टच नहीं करना है, लेकिन किसको टच करना है, बाबा को टच करना है। जैसे मन से गए और बाबा को टच किया और फिर वापस, बार बार अशरीर बनने की प्रैक्टिस करनी है, आज के मूल्य में भी था। और तुम्हें किसी बात का फिक्र नहीं करना है, क्यों, ये ड्रामा डैश है, क्या है, अटल है। और फिक्र क्यों नहीं, आज किसी का हार्ट फेल हो जाए तो फिक्र नहीं करना, क्यों, क्या कल्याण है। हाँ, वो ज्ञान और योग के संस्कार आगे लेके जाएगा तो भारत की और अच्छी सेवा करेगा, इसलिए जल्दी जल्दी चले जाए तो अच्छा है, और ज्यादा सेवा जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। और बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, ये है पाठशाला, यहां क्या होता है, नर से नारायण बनने का। और क्या बोला बाबा ने आज की मुरली में, हाँ, जैसी स्मृति होगी वैसा फिर अगला जन्म होगा, अंत मति सो गति की बात बताई। और क्या कहा, गीत कौन सा था आज, तुम ही हो माता पिता बंधु सगा। तो कल की मुरली से कितनी बातें सुनी, सबसे पहली बात सुनी मधुबन की महिमा, ये मधुबन क्या है, वरदानी भूमि है, रूहानी मेला है, जहां नदियों और सागर का मेला केवल सारे संसार में केवल यही एक स्थान है। बाबा के स्पष्ट महावाक्य हैं, सारे संसार में केवल एक मधुबन का स्थान है जहां नदियों और सागर का मिलन होता है, ऐसा स्थान संसार में कहीं और नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माया नए रूप से आएगी। बाबा ने कहा माया तो भगवान भी बनकर आएगी है? तो देखना है भले कुछ भी हो संसार में, लेकिन बाबा ने जो हमको ज्ञान दे दिया उसको ज्ञान को हमने जीवन में लाया तो इधर उधर भागने की जरूरत कहाँ है हमको। सारा ज्ञान स्पष्ट हमारे सामने है, उस ज्ञान को अमल में लाओ, उसमें डूबे रहो, उससे खेलते रहो, उसका चिंतन करो, आदान प्रदान करो, उसी तो तुम्हारा जीवन निखरेगा। बाबा अभी हमारे सामने आ जाए, हमको पूरा रात दृष्टि देते रहें, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा? हमारे सिर पर हाथ रख दे परिवर्तन हो जाएगा? भले साव मुरली आके बाबा दोबारा चला दे परिवर्तन हो जाएगा? हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं, तो कहने से क्या होगा? जो बाबा कहकर गए हैं उसको प्रैक्टिकल में करना, ये उसका आशीर्वाद है, ये उसकी कृपा है। उसने जो कहना था वो तो सारा कुछ कह दिया, उसको केवल जीवन में लाने की सारा पुरुषार्थ है। तो इस मधुबन की धरनी में जितना भी समय है हमें अपने आप को पूरा चार्ज कर लेना है, जैसे मधुबन हमारी यहाँ ब्रुक्टी में बस जाए। जैसे दादी जानकी जी कहते थे कि इतने सालों से हम योग लगा रहे हैं, अब मेरी ब्रुक्टी तो ऐसे बन गई जैसे परम धाम ये बन गया हुआ है, वो सारी स्मृतियां समा गई हैं उधर। तो तपस्या वर्ष है, इस तपस्या में क्या करना है, तपस्या वर्ष का पूरा फायदा लेना है। बाबा ने कहा ड्रामा में ये भी सहयोग का आपको ये वरदान है, अविनाशी बाप मिला है, अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा हो, अविनाशी भाग्य है, इसलिए इस अविनाशी भाग्य के नशे में सदा रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना, वो खजाने उनको खजानों को वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ से बचाना है, उसको जमा करना है, और जमा करने की विधि बांटो बढ़ाओ। और फुल नॉलेज कौन सी है, मेरा बाबा, बस उसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार है, सारा विस्तार भी उसमें, सार भी उसमें ही है। और स्वप्न में भी कोई गलती नहीं करना, कौन सी, जो भी विशेषताएं गुण है प्रभु की देन है। हाँ, बाबा ने एक बात और कही, अगर उनको मेरा कहते हो जैसे ये डैश और डैश है क्या, अगर प्रभु महा, एक तो महापाप है, और एक और बात कही, प्रभु विशेषताओं को, प्रभु प्रसाद को अपना मानना डैश और डैश है, अभिमान और अपमान है, कि हमें अभिमान हो गया है कि हमारी विशेषताएं और भगवान का जैसे अपमान कर रहे हैं। तो इतनी सारी ढेर सारी बाबा की ऐसी शिक्षाएं हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, जीवन की समस्याओं को दूर करती हैं, तो बार बार मुरली में डूबे रहने का। ओम शांति।
पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है,
जीवन फुलवारी है।
बहार बन कर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बन कर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी